ये आकाशवाणी दिल्ली है। आतिशी ने आज दिल्ली की मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। भाजपा ने आज नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में 3 दिवसीय जनता का मुद्दा विधानसभा में अभियान की शुरुआत की। 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। और सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर की सभी अदालतों से कहा कि वे चाइल्ड पोर्नोग्राफी का शब्द का प्रयोग न करें। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने आज सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में अपना कार्यभार संभाल लिया। अपना पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री आतिशी ने बताया कि वे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सम्मान में मुख्यमंत्री की कुर्सी को खाली छोड़कर एक अन्य कुर्सी पर बैठकर सरकार चलाएंगी। उन्होंने दावा किया कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे।
शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में चुनाव है, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे।
वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री आतिशी के निर्णय और बयान की निंदा की है। भाजपा ने कहा कि सुश्री आतिशी के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि श्री केजरीवाल इस सरकार को असल में चला रहे हैं। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इस तरह मुख्यमंत्री की मेज पर 2 कुर्सी रखना संवैधानिक व्यवस्था, प्रशासनिक नियम और मुख्यमंत्री पद का अपमान है। उन्होंने कहा कि सुश्री आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की गरिमा के साथ ही दिल्ली की जनता की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है।
आतिशी मार्लेना ने आज संविधान के साथ खेलने की कोशिश की है। जिस तरह से उन्होंने 2 कुर्सी दिखाई है, ये सीधा सीधा संवैधानिक नियमों का उल्लंघन। एक संवैधानिक पद का इस तरह से मजाक बनाना, एक संवैधानिक पद पर बैठी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। आज आपका पहला दिन था, आज आपको दिल्ली वालों के लिए बताना चाहिए था कि आपका विजन क्या है, कैसे दिल्ली की सड़कें ठीक होंगी, कैसे बिजली के बिल बढ़े हुए वापस होंगे, कैसे लोगों को पीने का पानी मिलेगा, वो 10,000 मार्शल जो आपने निकाल दिए कैसे उनकी नौकरी पक्की करेंगे आप, एजुकेशन डिपार्टमेंट के वो स्थायी शिक्षक, हेल्थ सर्विसेज के वो लोग जिनको आपने पक्का करने का वादा किया था उनको कैसे पक्का करेंगे, उसके बारे में बोलना चाहिए था, लेकिन आप लगी हैं नौटंकीबाजी में, चमचागिरी में। तो इस तरह से सरकारें नहीं चला करती।
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल को मुख्यमंत्री के कार्यालय और सचिवालय से दूर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुर्सी का नियंत्रण उनके हाथों में ही है। श्री गुप्ता ने सुश्री आतिशी के इस निर्णय को संविधान का अपमान बताया।
ये असंवैधानिक है, संविधान का उल्लंघन है। केजरीवाल अपनी इनसिक्योरिटी के लिए अगर इस तरह की खाली कुर्सी मुख्यमंत्री से रखवाते हैं तो ये रिमोट से चलने वाली सरकार से दिल्ली की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। सरकार चलाने में इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। फीवर जाम है, सड़कें टूटी पड़ी है, गंदा पानी पीने को मिल रहा है, ये पानी आ ही नहीं रहा, 50 लोग डूबकर मर गए, DTC की बसें सड़क से हट रही हैं, पॉल्यूशन की स्थिति जो है वो दयनीय होती जा रही है, यमुना मैली की मैली है। तो वो तमाम चुनौतियां जो दिल्ली के सामने हैं उन पर कोई ध्यान नहीं है।
कांग्रेस ने भी सुश्री आतिशी के इस फैसले पर सवाल खड़ा किया है। पार्टी के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी ने जब पद संभाला था तब महिला शक्ति की एक उम्मीद जगी थी, जिसे इस निर्णय ने धूमिल कर दिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने आज अपना कैबिनेट पद संभाला। मीडिया से बातचीत में श्री राय ने बताया कि वे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में किए गए कार्यों को नई सरकार में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्री होने के नाते सर्दियों के दौरान प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए सरकार पहले से ही शीतकालीन एक्शन प्लान पर काम कर रही है। उन्होंने सूचित किया कि सरकार ने एक्शन प्लान के अंतर्गत योजनाएं विशेषज्ञों और संबंधित विभागों के साथ चर्चा करके तैयार की है। श्री राय ने बताया कि योजना पर विस्तृत चर्चा के लिए उन्होंने मुख्य सचिव के साथ एक बैठक निर्धारित की है, जिसके बाद ये एक्शन प्लान बुधवार को जारी किया जाएगा।
जो काम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चल रहा था उन कामों को पूरा करना हम सबका दायित्व है। हमारे सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को कम करना, और सरकार पहले से उसकी तैयारी कर रही है। उसको लेकर के हमने एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग की, सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। विंटर एक्शन प्लान जो है सब जगह से रिपोर्ट आ गई है, तैयार हो चुका है। अभी 1:30 बजे हम चीफ सेक्रेटरी के साथ भी दिल्ली के प्रदूषण और विंटर एक्शन प्लान को लेकर के हम बैठक कर रहे हैं, और इसके बाद 25 तारीख को विंटर एक्शन प्लान सरकार जो है लॉन्च करेगी।
श्री राय के अलावा मुकेश अहलावत ने भी दिल्ली के कैबिनेट मंत्री के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। श्री अहलावत ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और अन्य मंत्रियों के कारावास में होने के कारण सरकार का काम रुका हुआ था। उन्होंने आश्वासन दिया कि नई सरकार अब अच्छी गति से काम करेगी।
अब हमारा काम स्पीड में चलेगा, पहले भी चल रहा था और स्पीड में चलेगा। SC ST समाज जितने भी है उन लोगों को मैं जहां जहां रुकावट आ रही है उनको आगे बढ़ाऊंगा। कुछ फाइलें बहुत दिनों से पेंडिंग थी, उन फाइलों को भी चेक करूंगा।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार को गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो UPITS के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस शो का समापन 29 सितम्बर को होगा। ये वियतनाम को भागीदार देश के रूप में भी दिखाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। भाजपा ने आज दिल्ली विधानसभा में लोगों की समस्याओं और मुद्दों को उठाने के लिए नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में 3 दिवसीय जनता का मुद्दा विधानसभा में अभियान की शुरुआत की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कनॉट प्लेस में आए लोगों से उनकी समस्याओं पर बातचीत की और उनसे एक शिकायत पत्र भरवाया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता बुधवार को पार्टी की महासदस्यता अभियान के दौरान घर घर जाकर दिल्लीवासियों से शिकायत फॉर्म भरवाएंगे और विपक्ष के नेता विजेन्द्र गुप्ता को सौंपेंगे। भाजपा इन शिकायतों को दिल्ली विधानसभा में उठाए जाने वाले मुद्दों को सूचीबद्ध करेगी। इसके अतिरिक्त पार्टी ने शिकायत भेजने के लिए ईमेल और व्हाट्सएप नम्बर भी जारी किये। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होने के बाद से विश्वविद्यालय में प्रचार जोर शोर से है। इस दौरान चुनाव के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रोफेसर सत्यपाल सिंह ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। लिंग दोह समिति की सिफारिशों का उल्लेख करते हुए प्रोफेसर सिंह ने छात्र संघ को प्रचार प्रसार विश्वविद्यालय की सीमाओं के अंदर ही करने की हिदायत दी है। पेश है हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट।
इस शुक्रवार को होने वाले छात्र संघ चुनावों के लिए कैंपस में हर तरफ उत्साह देखा जा रहा है। सभी उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए छात्रों तक पहुंचकर उन्हें अपने पक्ष में करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पूरे कैंपस में चल रही चुनावी भागदौड़ में छात्र भी उम्मीदवारों के मुद्दों को सुन रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किन उम्मीदवारों के हाथ छात्र संघ की 4 सीटों की चाबी लगती है। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर, आकाशवाणी दिल्ली।
डिजिटल कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया JMI ने जर्मन इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। विश्वविद्यालय ने बताया कि इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य JMI में डिजिटल कौशल, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करना है। उन्होंने बताया कि यह समझौता ज्ञापन डिजिटल युग की उभरती जरूरतों और प्राथमिकताओं को संबोधित करने के लिए GIZ के साथ आपसी प्रतिबद्धता स्थापित करता है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्री सेठ ने नई दिल्ली में आज संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों और उप महानिदेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि NCC अनुशासित, दायित्वपूर्ण और प्रेरित युवा नागरिकों को आकार देने में सहायता करता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने द्विभाषी साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में परिचर्चा पर प्रसारित करेगा। पोषण जागरूकता बढ़ाने और अधिक स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में किए जा रहे उपायों पर आधारित इस परिचर्चा में सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक श्रोताओं के सवालों के जवाब देंगी। इस कार्यक्रम में श्रोताओं को गर्भवती महिलाओं, शिशुओं को दूध पिलाने वाली माताओं, किशोरियों और बच्चों के लिए पोषण के विभिन्न पक्षों पर विशेषज्ञों से प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 011-23-42-10-50 और 011-23-31-44-44 पर विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9289904044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकेंगे। कार्यक्रम आकाशवाणी की गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर रही हैं। श्री बिरला इस संगठन के अध्यक्ष भी हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी, सभापति, अध्यक्ष और उपसभापति सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय सतत और समावेशी विकास प्राप्त करने में विधायी निकायों की भूमिका है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बदलते परिदृश्य के मद्देनजर लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए देश के विधायी निकायों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में आज हाइफा युद्ध के शहीदों के सम्मान में हाइफा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारत ने इसराइल के राजदूत रूवेन अजार ने दोनों देशों के बीच संबंधों की सराहना की। 1918 में ब्रिटिश भारतीय सेना के प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सा रहे भारतीय सैनिकों ने हाइफा की लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई भारतीय सैनिकों के लिए एक निर्णायक जीत थी। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आधिकारिक तौर पर 3 मूर्ति चौक का नाम बदलकर 3 मूर्ति हाइफा चौक कर दिया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC नई दिल्ली में कर्मचारियों और छात्रों के बीच स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए आज एक विशेष कार्यक्रम किया। संस्थान ने जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने कैंपस में एक सेल्फी प्वाइंट स्थापित किया, जिसमें छात्रों के साथ कुलपति डॉ अनुपमा भटनागर और उपकुलपति डॉ निमिष रुस्तगी ने भाग लिया। दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग ने वेक्टर जनित बीमारियों VBD के प्रसार को रोकने के लिए नई दिल्ली स्थित मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एक विशेष निगरानी अभियान चलाया। अभियान के अंतर्गत छात्रावास, प्रशासनिक ब्लॉक, अस्पताल, पार्किंग और निर्माण स्थलों सहित पूरे परिसर में वेक्टर निगरानी, फॉगिंग, फोकल स्प्रे और एंटी लार्वा कार्रवाई के लिए जन स्वास्थ्य विभाग का दल तैनात किया गया। नगर निगम ने बताया कि उनके निरीक्षण के दौरान प्लास्टिक कंटेनर और संभावित प्रजनन स्थलों की पहचान की गई, जिसमें मच्छरों के प्रजनन पाए जाने वाले कंटेनरों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियो देखना पॉक्सो अधिनियम का उल्लंघन है। शीर्ष अदालत ने देश भर की सभी अदालतों से कहा है कि वे किसी भी न्यायिक आदेश या फैसले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का प्रयोग नहीं करें। सर्वोच्च न्यायालय ने आज ये निर्देश मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द करते हुए दिया। मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया था कि बच्चों से जुड़ी अश्लील वीडियो देखना पॉक्सो अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा। राजधानी दिल्ली में आज विभिन्न क्षेत्रों में मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 24.9 डिग्री सेल्सियस रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आतिशी ने आज दिल्ली की मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। भाजपा ने आज नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में 3 दिवसीय जनता का मुद्दा विधानसभा में अभियान की शुरूआत की। 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। और सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर की सभी अदालतों से कहा कि वे चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का प्रयोग न करें। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।